अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 8 है, नॉवेल बेबाकों की तलाश। ये नॉवेल नाबीना खवातीनों हजरात की खिदमत में पेश किया जा रहा है। पेशकश करतबा ऑडियो लाइब्रेरी, मुसन्निफ इब्ने सफ़ी, आवाज़ हुमा निहाल। मजीद कुतुब के लिए 0300-291-9600 और 0321-213-8225 पर रब्ता कीजिए। तो आइए सुनते हैं पार्ट 8। अब यहाँ उसके सामने एक ही रह गया था, कब क्या मतलब वो हकलाया। जोसेफ ने दांत निकाल दिए और पुरशफकत लहजे में बोला, अभी बताता हूँ। तुम अपने दोनों हाथ उठाए दीवार से लगकर खड़े हो जाओ। चलो यूं नहीं, मुंह दीवार की तरफ करो। ठीक है। उसने रिवॉल्वर उसकी कमर से लगाकर जामे तलाशी ली, फिर अपना रिवॉल्वर जेब में डालकर बोला, हाथ नीचे गिरा लो और मेरी तरफ मुड़ जाओ। वो सहमे हुए अंदाज में मुड़ा और एक बार फिर जोसेफ के दांत निकल पड़े। आखिर आखिर वो हकलाया, तुम चाहते क्या हो? मैं तुम्हें पीटना चाहता हूँ। अगर तुम्हारे हलक से जरा सी भी आवाज निकली तो फिर कत्ल भी कर देना चाहूंगा, जोसेफ ने कहा और उसे दोनों हाथों से पीटना शुरू कर दिया। उधर पिटने वाला भी उसे खाली हाथ देखकर शेर हो गया और झपट झपट कर हमले करने लगा। ओह, जोसेफ ने हैरत जाहिर करते हुए कहा, बाकायदा तौर पर फाइटिंग करोगे? लो ये बायां संभालो। घूंसा पड़ते ही मुकाबिल कई फीट के फासले पर जा पड़ा। उठो उठो, जोसेफ हाथ हिलाकर बोला, अभी दूसरे से भी निपटना है। लेटे ही लेटे उसने उगलदान उठाया और जोसेफ पर खींच मारा, लेकिन वो बेखबर तो नहीं था, झुकाई देकर साफ बच गया। अब तो मैं पैर भी इस्तेमाल करूंगा, जोसेफ ने कहते कहते छलांग लगाई और उसके सर पर ठोकर लगाता हुआ दूसरी तरफ निकल गया। फिर पलटा और उसे ठोकरों ही पर रख लिया। फिर जैसे ही उसने कराहना शुरू किया, जोसेफ उड़ाया, खोपड़ी में गोली ही उतार दूंगा अगर आवाज निकली। उसके बाद वो उसे बेदर्दी से पीटता रहा और वो खामोशी से पिटते पिटते बिलाखिर बेहोश ही हो गया। जोसेफ ने उसे झुक कर देखा और दांत निकाल दिए। फिर वो गुसल खाने के दरवाजे की तरफ बढ़ा, टिटकने खिसकाई और एकदम दरवाजा खोल दिया, लेकिन गुसल खाना खाली था। फौरन ही उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। दूसरे आदमी को उसने गुसलखाने में बंद तो कर दिया था, लेकिन उस दरवाजे पर उसकी नजर नहीं पड़ी थी जो गालिबन बराबर के कमरे में खुलता था। अब भी वो दरवाजा उसे बंद ही नजर आया। उसने तेजी से उधर के दरवाजे को दोबारा बंद किया और सिटकनी चढ़ा दी। बेहोश आदमी पर नजर डालता हुआ अब वो निकासी के दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। जोसेफ पैदाइशी सिपाही और सख्त जान किस्म का जंगजू था, लेकिन इमरान की सोबत ने उसे इतना मोहतात तो बना ही दिया था कि वो गुसल खाने के दूसरे दरवाजे को खोलने की हिमाकत ना कर बैठता। कमरे से बाहर निकलकर उसने शिकारियों के नरगे में घिरे हुए किसी दरिंदे के से अंदाज में चारों तरफ देखा और उस कमरे की तरफ तवज्जो दिए बगैर जहां इमरान से मुलाकात हुई थी आगे बढ़ गया। तीसरी मंजिल के जीनों से उतरकर दूसरी मंजिल पर आया। फिर यहाँ से जीनों की तरफ बढ़ ही रहा था कि रीटा से मुठभेड़ हो गई। अरे, वो इसे देखकर ठटकी। अरे वरे क्या, वो गुर्राता हुआ आगे बढ़ता चला गया। ठहरो जोसेफ, ठहर जाओ। क्या है, वो रुक कर झुल्लाए हुए अंदाज में मुड़ा। क्या तुम्हें इल्म है कि तुम्हारे सर से खून बह रहा है? बह रहा होगा। वो जीने तय करके पहली मंजिल पर जा रहा था। रीटा उसके पीछे पीछे उतरती रही। फिर कुछ देर बाद जब वो अपने कमरे की तरफ जा रहा था, रीटा ने उसे दोबारा रोकना चाहा। बोलो मत, मुझे जाने दो। अरे, ये जख्म सड़ जाएगा तो तुम्हारा क्या बिगड़ेगा, उसने खुश्क लहजे में कहा। अच्छा अच्छा जाओ, मैं तुम्हारे लिए दुखी हूँ, रीटा खिसिया कर बोली। जोसेफ ने अंदर दाखिल होकर जोरदार आवाज के साथ दरवाजा बंद किया। साजदा इस वक्त एक साफ सुथरे ड्राइंग रूम में बैठी चाय पी रही थी। बजाहिर इतनी ही बशाश नजर आ रही थी जैसे उसके जहन में इस किस्म का कोई सवाल ही ना हो कि यहाँ तक कैसे पहुंची होगी। एक खुश अखलाक आदमी मेजबानी के फराइज अंजाम दे रहा था। वैसे अभी तक मामले की बात नहीं छिड़ी थी। साजिदा को बस इतना ही याद था कि उसने होटल के कमरे में उन दोनों की पेश की हुई चाय पी ली और थोड़ी देर बाद उसका सर चकराने लगा था। हमें अपनी गलतफहमी पर बेहद अफसोस है मिस हबीब, दफातर मेजबान ने कहा। कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि अंजुमन वालों की गलतफहमी रफा कर सकी और अब मैं उस मर्दूत को बताऊंगी कि बेवकूफ कैसे बनाया जाता है, वो किस तरह मोहतरमा। ओ, साजिदा मुस्तबराना अंदाज में बोली, उन लोगों ने उनका ताकुब जरूर किया होगा जो मुझे यहाँ लाए थे। मुतमईन रहिए मोहतरमा, आप इस तरह लाई गई थी कि किसी को कानो कान खबर भी ना हुई होगी। भला ये कैसे मुमकिन है, आप बेहोश की गई थीं, मेजबान मुस्करा कर बोला। आपका बंडल बनाकर बावर्ची खाने पहुंचा दिया गया था और वहां से एक वैन इस बंडल को यहाँ तक लाई थी। बेहद चालाक लोग हैं, साजिदा सर हिलाकर पुरतश्वीश लहजे में बोली। आखिर उन्होंने मेरा मेकअप ऐसा क्यों किया था कि मैं बआसानी पहचान भी ली जाऊं? हाँ, ये बात काबिले गौर है। मेजबान के चेहरे पर भी तश्वीश के आसार नजर आए और कुछ देर बाद उसने कहा, मुझे यकीन है उन्हें यही ना मालूम होगा कि आप इतनी देर तक उसी होटल में रही थी। ऐसा ही हो तो बेहतर है, साजिदा की आवाज कांप रही थी। दफातन किसी दूर अफ्तादा हिस्से से दरवाजा पीटने की आवाज आई और मेजबान इस तरह चौंक पड़ा जैसे वो अनहोनी हो। एक मिनट मोहतरमा, मैं अभी हाजिर हुआ, वो मुस्तरबाना अंदाज में उठता हुआ बोला। साजिदा उसे कमरे से जाते हुए देखती रही। सब उलझन में थी कि अब क्या होगा, उन्हें इसकी बातों पर यकीन आ गया है या नहीं। अगर नहीं आया तो क्या अब तक वो महज इसलिए जिंदा रहने दी गई है कि उन्हें उससे इमरान का सुराग मिलने की उम्मीद है? कुछ भी हो, वो तलवार की धार पर से गुजर रही है। उसकी नजर आमदोरफ्त के दरवाजे पर थी। अचानक मेजबान आता दिखाई दिया। उसके चेहरे पर सरासीमगी के आसार थे। उन्हें खबर हो गई है, उसने बौखलाए हुए अंदाज में कहा। साजिदा कुछ बोली नहीं, सवालिया नजरों से देखती रही। मेजबान ने गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा, नीगरों ने एक को शायद जान ही से मार दिया, दूसरा बदइज्जत बचकर भागा है। आपका ख्याल बिल्कुल सही था, उन्होंने उनकी नकलो हरकत पर निगरानी रखी थी, वरना नीगरो उस कमरे तक हरगिज ना पहुंच सकता। किससे इत्तला मिली? उन्हीं में से एक ये इत्तला यहाँ लाया है, जिन्होंने आपको उनके पंजे से रिहाई दिलाई थी। हिमाकत, खुली हुई हिमाकत! साजिदा मेज पर घूंसा मारकर बोली, अगर पहले वो मुझ तक ना पहुंच सके होंगे, अब पहुंच जाएंगे। आखिर सीधा यहीं क्यों दौड़ा आया? वो आदमी इसकी इत्तला फोन पर भी दे सकता था। दरअसल वो बहुत ज्यादा खाइफ है। नीगरो किसी खूंखार दरिंदे की तरह दूसरे आदमी से चिमटा हुआ था। गालिबन वो बारी बारी से दोनों को मारना चाहता था, इसलिए एक को गुसलखाने में बंद कर दिया था। लेकिन वो दोहरे कमरों का मुश्तरका गुसलखाना था और दोनों कमरे इन्हीं के कब्जे में थे, इसलिए दूसरा निकल भागने में कामयाब हो गया। बस तो फिर वो जल्द ही यहाँ पहुंच जाएंगे। यानी यानी क्या मतलब? मेजबान किसी कदर खौफजदा भी नजर आने लगा था। अरे, ये सब कुछ किसी सोची समझी स्कीम के तहत हुआ होगा। नीगरो किसी गेंडे की तरह मजबूत और सख्त जान है, उसने ये सोचकर ही एक को गुसलखाने में बंद किया होगा कि वो वहां से फरार हो जाए। फिर वो देखें कि भागकर कहाँ जाता है। एक को बंद करके दूसरे को पीटने का कोई जवाब ही नहीं, जबकि वो उन दोनों को एक साथ ही पीट सकता था। ओह हो, यकीनन यही बात होगी। फिर अब क्या किया जाए? मेरे हाथ पैर बांधकर यहीं डाल दो और खुद फरार हो जाओ। क्यों क्यों? ओह, इतना भी नहीं समझते? इस तरह मैं फिर उनमें वापस चली जाऊंगी और मुझ पर उनका एतमाद बदस्तूर बरकरार रहेगा। फिर मैं देखूंगी कि अंजुमन के लिए क्या कर सकती हूँ। बिल्कुल ठीक है मोहतरमा, बिल्कुल ठीक। हम आपसे राबता कायम रखेंगे, मेजबान ने कहा और तेजी से कमरे से चला गया। फिर वापसी में भी देर नहीं लगाई। उसके हाथ में रेशम की डोर का लच्छा था। देखते ही देखते उसने साजिदा के हाथ पैर बांध दिए और लजाजत से बोला, मुझे अफसोस है मोहतरमा। ओह, जल्दी करो, इमारत खाली कर दो। जरा ही सी देर बाद वहां कब्रिस्तान का सन्नाटा छा गया। साजिदा सख्ती से होंठ पर होंठ जमाए सोफे पर पड़ी रही। उसका अंदाज गलत भी हो सकता था। फिर ऐसी सूरत में तो वो इसी तरह बंधी पड़ी रह जाती। देखा जाएगा, उसने सोचा, अगर वो इतने ही अहमक हैं कि इस मौके से भी फायदा ना उठा सकें, तो फिर वो कर ही क्या सकेंगे। वैसे जोसेफ के हाथों इस तरह उन दोनों की पिटाई इमरान ही की फिक्र का नतीजा मालूम होती है, वरना इस एक को गुसलखाने में बंद करते वक्त दूसरे तरफ का दरवाजा नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता। लिहाजा मकसद इसके अलावा और क्या हो सकता था कि दूसरा आदमी फरार हो जाए? और दूसरे आदमी के फरार का मकसद यही हो सकता है कि उसका ताकुब किया जाए। फिर इतनी देर क्यों लग रही है? वो लोग कहाँ हैं जिन्होंने इसका ताकुब किया होगा? दफातन वो चौंक पड़ी। यकीनन किसी किस्म की आवाज ही थी। फिर कदमों की चाप साफ सुनाई देने लगी। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और अजीब सा चेहरा दिखाई दिया। लेकिन अजीब सा क्यों? वो तो कोई नकाबपोश था। उसने सोफे के करीब आकर उसके हाथ पैर खोले और भर्राई हुई आवाज में बोला, बाहर सुर्ख रंग की एक स्पोर्ट कार मौजूद है, गालिबन तुम ड्राइव कर सकती हो। तुम कौन हो? वक्त जाया ना करो। वो दरवाजे की तरफ हाथ उठाकर तहकुमाना लहजे में बोला। आवाज साजिदा के लिए बिल्कुल नई थी, फंसी फंसी भर्राई हुई आवाज। मुझे कहाँ जाना होगा? टंकी में इतना पेट्रोल मौजूद है कि तुम सुबह तक शहर में चक्कर लगा सकती हो। कहीं किसी जगह भी तुम्हें बता दिया जाएगा कि कहाँ जाना है। जल्दी करो, इस दरवाजे वाली राहदारी के सिरे पर सदर दरवाजा है। शहर की सड़कों पर मारे फिरने का मकसद उसकी समझ में ना आ सका, लेकिन करना वही था जिसके लिए कहा गया था। इमारत से बाहर निकलने में कोई दुश्वारी पेश ना आई। सड़क की दूसरी जानिब सुर्ख रंग की स्पोर्ट कार खड़ी दिखाई दी। उसने इत्मीनान से सड़क पार की और गाड़ी का दरवाजा खोलकर स्टीयरिंग के सामने बैठ गई। सोच रही थी कि कहाँ जाए। इसका भी तो खतरा था कि कहीं ट्रैफिक पुलिस के हत्थे ना चढ़ जाए। पूरी तरह शहर देखने का इत्तेफाक आज तक नहीं हुआ था। हो सकता था कि ट्रैफिक के किसी कानून की खिलाफ वर्जी ही सरजद हो जाए। ऐसी सूरत में उससे ड्राइविंग लाइसेंस का मुतालबा भी किया जाएगा। फिर वो क्या करेगी? उसने सोचा, जिन लोगों के हाथों वो खिलौना बनकर रह गई है, वही इस पर भी नजर रखेंगे। अब तो जिंदगी तूफान की नजर हो ही चुकी है। किसी भी दूसरे लम्हे के मुतालिक यकीन के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। उसने लापरवाही से शानों को जंबिश दी और इंजन स्टार्ट कर दिया। अकब नुमा आईने की पोजीशन तब्दील करते वक्त वो सोच रही थी कि अंजुमन वाले इतने अहमक नहीं हो सकते, उसका ताकुब जरूर किया जाएगा। दफातन डैशबोर्ड के किसी हिस्से से आवाज आई, परवाह ना करो, चलती रहो। और ये आवाज 100% इमरान ही की थी। साजिदा का दिल धड़कने लगा, उसकी आवाज, उसका मखसूस लहजा। साजिदा के जहन में वो खुशबू अंगड़ाई लेने लगी जिसका तजर्बा उसे इमरान की मौजूदगी में अमूमन होता रहता था। पता नहीं वो किसी मखसूस किस्म का सेंट इस्तेमाल करता था या वो खुशबू कुदरती तौर पर उसके वजूद से ताल्लुक रखती थी। तुम मुझसे गुफ्तगू भी कर सकती हो, आवाज फिर आई। तुम कहाँ हो इमरान? उसने बेसाख्ता पूछा। ये नहीं बताऊंगा फिलहाल। मैं क्या करूं? साजिदा ने पूछा। जो कुछ कहा गया है, जवाब मिला। वो कौन था? मुझे नहीं मालूम, जवाब मिला। किस मुसीबत में फंसा दिया है तुमने? और फिर ये मुसीबत भी ना मालूम हो अगर तुम रोज मिलते रहो। यही तो मुसीबत है। ओह, तो ये मुसीबत है तुम्हारे लिए? बिल्कुल, इसीलिए मैंने शायरी शुरू कर दी है। एक शेर सुनो, अभी अभी कहा है। कुछ लड़कियां मुझे घूरती हुई करीब से गुजरी थी। कहा है, ए जोरा जबीनो, मुझे इस तरह न देखो। मैं हूं तो तमाशा, मगर इतना भी नहीं हूँ। ओ, तो तुम महसूस कर सकते हो कि तुम्हें कोई घूर रहा है? साजिदा ने पूछा। भाई, घूरे जाएंगे तो जरूर महसूस करेंगे। उनमें से मुझे एक छोटे कद की लड़की बहुत अच्छी लगी थी, जो गालिबन गाउन पहने बगैर घर से बाहर नहीं निकलती। मेरा ख्याल है कि तुम भी अपने चुस्त लिबास पर गाउन पहने बगैर बाहर ना निकला करो। तुम मुझे बातों में बहलाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? फिर बताओ, क्या करूं? तुमने मुझसे ये भी ना पूछा कि किस हाल में हूं। पूछने की क्या जरूरत है, जबकि मैं तुम्हारे हालात से हर वक्त बाखबर रहा हूँ। तो ये कलूटे वाली स्कीम तुम्हारी ही थी? हरगिज नहीं, ये उसकी अपनी जिद्दत थी। उस काली खोपड़ी में बाज औकात बड़े जोर की बिजली चमकती है। अब मुझे क्या करना है? चक्कर लगाती रहो। मकसद क्या है इसका? वो किसी कदर झुंझला कर बोली। अच्छा बस, बकिया फिर। डैशबोर्ड से अजीब तरह की सरसराहट सुनाई दी और फिर सन्नाटा छा गया। साजिदा इमरान को पुकारती ही रह गई, लेकिन कोई जवाब ना मिला। बुरा सा मुंह बनाकर उसने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। इतनी देर में एक भी काम की बात ना हो सकी। वो उसे शायरी और लड़कियों के तस्करे में उलझाए रहा था। वो और शायरी, इमरान और लड़कियां, मुजहका खेज, पता नहीं उसकी दिलचस्पियां क्या हैं। उसकी जगह कोई दूसरा नौजवान होता तो अब तक पता नहीं क्या हो चुका होता। ओह, क्या हो गया है मुझे? सबीहा ने तकिए पर हाथ मारकर बुलंद आवाज में गालिबन सोचा ही था, फिर उठ बैठी थी। टाइम पीस 3 बजा रहा था। वो ठीक 10 बजे सो जाने की नीयत से लेटी थी, लेकिन अभी तक तो आई नहीं थी नींद। ख्यालात का तार था, फिर टूटने का नाम ही नहीं लेता था। उलझन उलझन, क्या करे, किससे कहे? और ये आदमी, ये बहरूपिया पता नहीं किस चक्कर में है। वो नए ड्राइवर के मुतालिक सोचती रही। खुद उसके लिए वो अभी तक बेजरर ही साबित हुआ था। उसका ये शुबा भी खुद उसने ही रफा कर दिया था कि वही उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। फिर अगर वो इन मुजहका खेज हालात में उसके घर तक ना पहुंचा होता तो कहाँ जा सकता कि किसी खास मकसद के तहत वो उसके खानदान से राबता कायम करना चाहता है। उलझन बढ़ती ही रही। बिस्तर से उठकर खिड़की के करीब आई। लॉन पर मलगिज्जा सा अंधेरा मुसल्लत था। आज तो शायद मुसलसल झाए झाए करने वाले झींगर भी सो गए थे। अजीब सा सन्नाटा फिजा पर तारी था। वो यूं ही गैर इरादी तौर पर पंजों के बल ऊपर उठकर मेहंदी की बाड़ के पीछे देखने की कोशिश करने लगी, जहां माली की कोठरी थी। लेकिन बाड़ की ऊंचाई बदस्तूर रुकावट बनी रही और उसे ख्वामखा गुस्सा आ गया। आखिर इतनी ऊंची बाड़ लगा देने की क्या जरूरत थी? ये पापा भी क्रेक हैं, पता नहीं इजलास कैसे करते होंगे। बात करने की तमीज तो है नहीं। घर पर कोई अजीज आ जाए तो उसकी तरह दांत निकाल कर पेशवाई करेंगे, जैसे उसकी आमद के मुंतजिर ही बैठे रहे हों। वो बात करेगा तो आप सर हिला हिला कर, जी हाँ और क्या, भला देखिए करते रहेंगे। PCS के वाइव, इसी में क्या किया होगा? जरूर दादा अब्बा की सिफारिशें काम आई होंगी, वरना ये हजरत तो क्लर्की के भी काबिल नहीं थे। जरीना उस दिन कह रही थी कि तुम्हारे पापा चाहे कुछ लगते हों, डिप्टी कलेक्टर तो हरगिज नहीं लगते। ये पापा कहाँ से आ कूदे? सवाल था उस मर्दूत का जिसका नाम अख्तर है। और अख्तर के बच्चे तुम कौन हो? आखिर ये बहरूपियापन किस लिए? अरे गजब, कहीं CID का आदमी ना हो, इसका तो ख्याल ही नहीं आया था। पहले ही रिश्वत के मामले में पापा बड़े बेबाक वाक़े हुए हैं। दोस्त शायद ही कोई हो, दुश्मन हजारों होंगे। हो सकता है उनकी भी स्क्रीनिंग हो रही हो। अच्छा तो बेटे, CID वाले तुम्हें भी देख लिया जाएगा। पापा को बात करने की तमीज हो या ना हो, लेकिन उनकी बेटी तुम्हें जरूर देख लेगी। और पापा भी इतने घामड़ तो है नहीं, इतना सारा वक्त लिखने पढ़ने ही में गुजरा है, कलम के पक्के हैं। उसने कमरे का दरवाजा खोला और चुपचाप राहदारी में निकल आई। अब सदर दरवाजे की तरफ जा रही थी। बाआहिस्तगी दरवाजा खोलकर बरामदे में आई और गैर इरादी तौर पर कदम लॉन की तरफ उठते रहे। बस वो चली जा रही थी कुछ सोचे समझे बगैर, और जब माली की कोठरी के करीब पहुंच गई तो ख्याल आया कि वो क्यों आई है, क्यों आई है। इस सवाल पर वो इसी तरह चौंकी थी जैसे किसी ने बाआवाज़े बुलंद ये सवाल किया हो। दरवाजे की दर्जों से केरोसिन लैंप की रोशनी फूट रही थी। उसने अंदर झांक कर देखा, वो पलंगड़ी पर बैठा कुछ सोच रहा था। इतनी रात गए अब तक जाग रहा है, सबीहा ने सोचा। वो इस वक्त ड्राइवर वाले बदनुमा मेकअप में नहीं था। कितनी मासूमियत थी चेहरे पर, गालिबन मासूमियत की बहुतात ही ने हिमाकत का रूप ढाल लिया था। बिल्कुल बेजरर, बिल्कुल बेजरर, सबीहा ने सोचा। ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कभी नहीं। लेकिन लेकिन उसे वो आदमी याद आ गया जिसे उसने सिर्फ घूंसों और लातों से अधमरा कर दिया था और फिर वो अस्पताल में मर ही गया था। कौन है ये, कौन है ये? ओ खुदा, अब क्या हो, ये यहाँ से कैसे जाएगा? जब पापा आ जाएंगे तब क्या होगा? गैर इरादी तौर पर उसने दरवाजे पर थपकी दी और उसे चौंकते देखा। ये भी देखा कि चेहरे की मासूमियत यकलत गायब हो गई है और आंखों में ऐसी ही चमक नजर आ रही है जैसे जैसे कोई तस्वीर याद ना आ सकी। लेकिन चिड़ियाघर का वो चीता जरूर याद आ गया जिसे एक बार उसने एक लोमड़ी को दबोचे देखा था। लोमड़ी किसी तरह अपने कटहरे से निकलकर बदहवासी में चीते के कटहरे में जा घुसी थी और चीता उस पर झपट पड़ा था। सबीहा को अच्छी तरह याद नहीं था कि उसके बाद क्या हुआ था, लेकिन चीते की आंखें उसके जहन में जम कर रह गई थी। फिर जब भी वो उनका तसव्वुर करती पूरा जिस्म हिलकर रह जाता और उस वक्त भी कांप कर रह गई जब उसने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा था। उसी किस्म का एहसास जहन के किसी गोशे में जाग उठा जैसा उस चीते की आंखों के तसव्वुर से बेदार हो जाता था। वो बड़ी एहतियात से चलता हुआ दरवाजे के करीब आया और बाआहिस्तगी पूछा, कौन है? सबीहा, उसने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया। क्या बात है? दरवाजा खोले बगैर उसने अंदर ही से पूछा। दरवाजा खोलो, क्यों? अंदर ही से पूछा गया। सबीहा को कोई जवाब ना सूझा, बस यूं ही कह बैठी, मुझे उलझन हो रही है। क्या दरवाजा खुलने से रफा हो जाएगी? हाँ, ये जवाब भी बस जबान ही से निकला था, जहन से उसका कोई ताल्लुक नहीं था। हल्की सी आवाज के साथ वो दरवाजा खुल गया। सबीहा ने डरते डरते उसके चेहरे पर नजर डाली, लेकिन अब वहां फिर हिमाकत के डोंगरे बरस रहे थे। आंखों में फिर वही पहले की सी हिमाकत आमेज सादगी नजर आ रही थी। तुम क्यों जाग रहे हो? सबीहा ने फिर यूं ही सवाल बराए सवाल कर डाला। यही सवाल तो मैं तुमसे भी कर सकता हूँ। मैं उलझन में मुब्तला हूँ और मैं आज तक किसी उलझन में मुब्तला ही नहीं हुआ, फिर क्यों जाग रहे थे? मम्मी और डैडी याद आ गए थे। खुदा के लिए मुझे इस उलझन से निजात दिलाओ। किस उलझन से? अरे पूछते हो किस उलझन से? वो रोहांसी होकर बोली, मैं तो इस उलझन का जिम्मेदार नहीं, तुम ही ने तो उसे मारा था। कितनी बार दोहराओगी? जाओ सो जाओ, तुम ही ने मुझे इस जंजाल में फंसाया है। मुझे ये बताओ कि उसने तुम्हें धमकाया क्यों था? मैं क्या जानू? बहरहाल वो कुछ कर गुजरने का इरादा रखता था। पता नहीं, कोई भी शरीफ आदमी उस सूरत हाल को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम क्यों छुप गए थे डिके में? मेरे साथ जाने की क्या जरूरत थी? डिके में छुपते वक्त तो मैं बेईमानी ही थी दिल में। क्या मतलब? सोचा था किसी जगह मौके मिलने पर इंजन में कुछ घपला कर दूंगा। नॉवेल बेबाकों की तलाश का बकिया हिस्सा अगले पार्ट 9 में समाप्त फरमाइए।